महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 18 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सौवसाहूणं भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्वप्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम् नाम्यम्। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है, और उसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 74 पर आ गए। 74 आज नया विषय शुरू होता है, सन्निकर्ष प्ररूपणा। ये 15 नंबर दिया ही हुआ है उन्होंने, बराबर है ना? अभी तक अच्छा बाद में देखा, अभी तक तो हमने नंबरिंग किया था उसको। अंतर की प्ररूपणा लंबी चली, अंतर हाँ 14 नंबर 44 पृष्ठ से 74 तक, ये नंबर 15 है। सन्निकर्ष दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव दर्शनावरण मोहनी और अंतराय का नियम से बंध करता है। वो बंध करता है, इतनी बात है नियम से। अब वो कैसा करता है वो बताएंगे, किंतु वह छह स्थान पतित बांधता है। देखो जहाँ अनुभाग की बात आती है तो वहां तो अनंतों में होता है अविभाग प्रतिच्छेद, तो उसमें कितनी हानि वृद्धि संभव है, तो कहते छह स्थान पतित। हाँ, उसका उत्कृष्ट भी हो सकता है और अनुत्कृष्ट कितना हो सकता है, तो छह स्थान तक, यानी अनंत अनंत गुणाहीन तक। क्योंकि अनुभाग के तो इतने वेरिएशंस है कि उसमें अनंत गुणा कहने से कुछ नहीं। ऐसे स्थिति में हमने देखा था, जिसकी ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला दर्शनावरण आदि की कितनी स्थिति बांधता है, तो कहते उत्कृष्ट भी बांध सकता है और अनुत्कृष्ट पल्ले के असंख्यात विभाग हीन तक बांध सकता है, असंख्यात। वैसे यहाँ तक चरसान पतित तक बांधता है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंध करता है, क्योंकि ज्ञानावरण का उत्कृष्ट कौन बांधेगा, संगीत पंचमी मिथ्या दृष्टि उसको बांधेगा। तो यहाँ तो सभी कर्मों का बंध हो ही रहा है, आयु को केवल वहाँ ऑप्शनल में रखेंगे। हाँ, वो अनुत्कृष्ट के लिए छह स्थान पतित है, नियम से बांधता है, किंतु वो छह स्थान पतित बांधता है। वही तो इसीलिए उसको शर्सान पतित का। अब कहते वेदिनी नाम और गोत्र का तो नियम से बंध करता है, परंतु अभी ये कैसी प्रकृतियां हैं, परिवर्तमान में भी उसका जो कुछ अलग अलग उसका जो होता है, किंतु और ये कैसी है, इनका उत्कृष्ट बंध तो ऊपर विशुद्धि में होता है। यहाँ सर्व संकलिष्ट जीव ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बांध करा, वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध तो क्षपक होता है, सॉरी
नहीं
असाता की कहाँ बात है यहाँ पर, अभी मूल की बात चल रही है। मूल हमने वेदिनी का उत्कृष्ट बंध कहाँ देखा था,
वो तो
शपक में देखा था, ख्याल में ही। तो जो उत्कृष्ट संकलेश है क्या वो उत्कृष्ट बांधेगा, नियम से अनुत्कृष्ट बांधेगा। ज्ञानावरण के उत्कृष्ट के साथ दर्शन और मुनि अंतराय का उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, उसमें शर्षस्थान पतित लिया। परंतु यहाँ तो नियम से अनुत्कृष्ट होता है, अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है, ये तो नियम है।
यहाँ पे जो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंद करेगा उसको शाखा भी बदलेगी, अशाखा दोनों
बन सकती
है। नहीं,
तो अभी उत्तर प्रकृति में उसकी बात करेंगे, किंतु अनुत्कृष्ट क्योंकि उसमें हमने साता बंधक असाता बंधक ऐसे देखे थे, आपको याद होगा तो अनुभाग के प्रकरण में। देखो वेदी ने नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, किंतु वह अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है, वह आयु कर्म का बंध नहीं करता, क्योंकि अति संकलेश परिणाम वाला है। इसी प्रकार दर्शनावरण मौनी और अंतराय कर्म की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये चार घाती कर्म का आपस में ऐसा ही कथन होगा। वेदिनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव तीन घाती कर्मों का नियम से बंद करता है। मुनि को क्यों लिया यहाँ पर, तीन घाती कर्मों का बराबर है, क्योंकि तो हमने शपक में लेना है ना दसवें के अंत में। जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है, ये तो समझ में आता है, क्योंकि उसका उत्कृष्ट बंद मिथ्या दृष्टि करता है। शपक वाला जो ज्ञानावरण बांधेगा, दर्शनावरण बांधेगा, अंतराय बांधेगा, तो अनंत गुणहीन बांधेगा। शपक क्या होता है दसवें गुण स्थान में, है ना, साता वेद्य बांध रहे हैं उसका उत्कृष्ट होगा। अभी हम जघन्य पढ़ के आए ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा। वेदिनी नाम का जघन्य मध्यम परिणाम में देखा था हमने, और उत्कृष्ट तो क्षपक में देखा था। चार घाती कर्मों का जघन्य हमने क्षपक में देखा था, और चार घाती
का उत्कृष्ट हमने क्षपक से
वेदिनी नाम। तो कहते जो वेदिनी का उत्कृष्ट बंद करने वाला जीव तीन घाती कर्मों का नियम से बंद करता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान और दर्शन अंतराय तो बंद रही है दसवें के अंत तक। वो कितना होगा, तो नियम से अनुत्कृष्ट, और वो भी अनंत गुणाहीन अनुभव का बंद करता है। वह मौनी और आयु कर्म का बंध नहीं करता, क्योंकि वो क्षपक दसवें वाला है। शपक सूक्ष्म सांप्राय वाला है ना, इसलिए वहाँ मोनी का बंधन नहीं, आयु का तो होता नहीं वहाँ पर। नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, जो नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है, क्योंकि ये अंतिम समय है सूक्ष्म सांप्राय शपक वाला। यहाँ पर नाम और गोत्र का भी उत्कृष्ट होता है, यानी उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट कुछ किसी जीव को, क्योंकि सभी जीवों के परिणाम तो समान है। इसी प्रकार नाम और गोत्र कर्म की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला हमने देखा था अप्रमत्त गुण स्थान वाला होता है जीव, सात कर्मों का नियम से बंद होता है। क्योंकि आयु बांध रहे तो अन्य सात तो बंद ही रहे। आयु कभी कभी बनती है, जब आयु बनती तो अन्य सात तो बंद ही रहे, इसलिए सातों का नियम से बंधक है। जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणे हीन अनुभाग का बंध करता है, क्योंकि चार घाती का उत्कृष्ट तो मिथ्या दृष्टि करेगा और अन्य तीन का उत्कृष्ट वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट तो क्षपक करेगा और यह प्रमत्त वाला दोनों का अनंत गुणहीन बंध करेगा। इसी प्रकार ओघ के समान मनुष्यत्रिक जहाँ जहाँ एक क्षपक श्रेणी घटित होती है, अप्रमत्त छठे से शुरू करता है, सातवें में चालू रहता है ना, तो सातवें में बंद तो होगा ना, बंद तो चालू है वहां पर सातवें में। देखो हमने स्वामित्व में देखा था अप्रमत्त लिखा है, हाँ ये पेज नंबर 8 पर है, पहली लाइन वो 7 से शुरू हुआ था। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्ध युक्त उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अप्रमत्त संयत जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। सातवें में शुरू नहीं होता है, आयु का बंध शुरू होता है छठे में और वो कंटिन्यूस सातवें में कंटिन्यू होता है।
पहले समय में
ना वो स्थिति में, यहाँ तो कहीं पर भी इन बिटवीन बांध सकता है, हमने देखा है कभी जगह नहीं आता, कभी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बांध सकता है। स्थान वृद्धि वगैरह तीन का नहीं है, पौना सेकंड पौना हाँ, ये नहीं वो जो हमारे जैसी नींद, परंतु वो निद्रा का निद्रा प्रचला तो है ना, उसका उदय तो 12वें के रूपांत समय तक है, वैसी निद्रा अभी वो कैसी, हम जैसे सोते वैसी निद्रा नहीं ले, जैसे कोई थोड़ा जैसे भारी नहीं सोता है, कभी कोई हम बोलते बोलते भी हम नींद आ रही, पर सो नहीं रहे हम, जागरूक है, फिर समझ में आता है कह रहे नींद आ रही है। ये तो उन मुनियों की तो कितनी तरल होगी, नहीं 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 उदय उदय होता है, उदय होता है या अनुदय होता है, निद्रा कर्म उदीरना का, उदीरना तो वैसे जिसका उदय उसकी उदीरना तो होती है, परंतु उसका उदय हर समय नहीं रहता है, जागृत अवस्था में उदय ही नहीं है, और जब नींद में है तो उसका उदय भी है, उदीरना तो होती है, जिसका उदय उदीरना तो सामान्य से सभी कर्मों में चली रही है।
पांच निद्रा जो है
नहीं, दर्शनावरण में इधर चार का उदय या पांच का उदय होता है, तीन का कहां से? जागृत अवस्था में चार का उदय और सोते हुए पांच का उदय, नहीं निद्रा कैसी है, ये पांचों निद्रा सर्वघाती है, जागृत अवस्था में उसका उदय नहीं है, वो अन्य दर्शनावरण रूप होकर उदय में आती होगी स्थूल संक्रमण से। ये हमने 8 पेज पर स्वामित्व देखा था, अपने सन्निकर्ष में आते वापस। हाँ अरविंद भाई ने क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया, आपने पहले ऐसे बताया था कि नींद आती है ना तभी उदीरना है तभी नींद आती है, तो ऐसा नहीं है, उदीरना तो होती है परंतु उदय होता है, निद्रा के काल में उदय रहता है उसका, और जागृत अवस्था में किसी भी पांचों ही निद्रा में से किसी भी निद्रा का उदय नहीं रहता है। हमने देखा था ना कि जैसे सर्वघाती का उदय नहीं है, देशघाती अन्य चक्षु दर्शनावरण रूप से उसका उदय चलता रहता है। हाँ बंध में तो वो तो कैसे ध्रुव बंदी है, मिथ्या दृष्टि और सासादन तो नव का बंध होगा, फिर उसके पश्चात छह का आठ में भी बंध विच्छित्ति निद्रा प्रचला की, फिर चार का रहेगा, चार का कहाँ तक होगा, दसवें तक से, और उदय में नियम से उदय ऐसा नहीं है जैसा अन्य प्रकृतियों में हम देखते हैं, निद्रित अवस्था जागृत अवस्था में उसका उदय ही नहीं है, अन्य कर्मों में हाँ पांचों का ही उदय नहीं, और जब निद्रा है तो पांच में से किसी एक का उदय है। बारहवें गुणस्थान वाले को निद्रा प्रज्वला का उदय का
सोया हुआ नहीं होगा ना बारहवें गुणस्थान,
ऐसा हमारे जैसा सोना तो वह तो होता ही नहीं है, परंतु जो कुछ अत्यंत हीन अनुभाग रूप से उसका जो कुछ उदय बताया है सातवें में भी उदय है, परंतु हम जैसे सोते वैसी नींद नहीं है, हम रात को जो बिल्कुल गाढ़ी निद्रा लेते हैं ऐसी नहीं है, उनके तो अनुभाग भी कितना हीन होकर उदय में आता है, और प्रशस्त कर्मों का अनुभाग तो कितना हीन होते होते, और ऐसा भी उसका उदय हर समय तो नहीं रहेगा, जब उदय होगा तो जैसा कहेंगे जिसको हम कहेंगे सार अपने सोड़ा कमती होगा, उदय नहीं जब कहते वो स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला की अपेक्षा उदय नहीं कहेंगे, हाँ वहाँ वेद का भी है, वहाँ पर वहाँ निद्रा कहने ऐसे सोने की अवस्था ऐसी नहीं है जैसे, और जैसे हम देखेंगे कि वो लेटे हैं परंतु आंखें बंद भी होगी, परंतु बीच बीच में उनकी जागृत अवस्था चलेगी, छठे सातवा वहां पर भी चलेगा कि नहीं, यानी वो अहम प्रवृत्ति की अपेक्षा देखते हैं, प्रवृत्ति नींद नहीं आती, यानी वो बिल्कुल ऐसा ही अर्थ है, पर वो कौन सी नींद, स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला वाली, जैसे हम कहते हैं देवों में नींद नहीं है, कौन सी उनमें निद्रा प्रचला है, पर ये तीन निद्राएं नहीं है, तो मनुष्य तीन जंग यही की कर्म भूमि की खास मुख्यता है, अभी भूमि में तो होगा मेरे ख्याल से उधर, आयु कर्म के हाँ वो छह छह महीना तो हम स्टोरी में पढ़ते हैं, पता नहीं वो क्या है, और ऐसे भी कुंभजुकर्ण हाँ निर्वाण कांड में आता है, हाँ अभी पता नहीं अपने कुछ अन्य मतियों की कल्पना अपने में घुस जाती है, और ये छह छह महीने वाली निद्रा जो है ये अफ्रीका में ऐसे कोई फ्लाई है वो मक्खी जैसे मधुमक्खी होती ना ऐसे वहां की कुछ है अफ्रीकन फ्लाई, वो काटने से ऐसे छह छह सात सात महीने ऐसे सोते सोते रहते, ये बीमारी है, ये छह महीने की सोने की जो बात आती है ये हम करना नहीं हो के आधार से उसको ऐसा नहीं देखेंगे, परंतु अपने इसमें भी है क्या अपने पुराणों में वो देखना पड़ेगा मुझे याद नहीं है, ये अन्यमति तो कहते हैं छह महीने सोता था बहुत सोता था, हाँ देखो अभी यहाँ पर देखेंगे आयु कर्म की बात चल रही थी, यानी जो आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर रहा है वो अप्रमत्त गुणस्थान वाला है, अन्य सात कर्म भी बंद रहे वहां उसके, और वह नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है, अब जहां जहां ये कुछ कर्म हमने क्षपक में देखे कुछ मिथ्या दृष्टि के देखे कुछ अप्रमत्त के देखे, तो ये सभी जहां घटित होता है ऐसी मार्गणाओं में ऐसा ही कथन होगा, तो कहते हैं मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय द्विक में, पंचेंद्रिय बाद में कॉमा नहीं चाहिए, पंचेंद्रिय द्विक एक शब्द है, एक शब्द है। त्रसद्विक, पांच मनोयोगी, क्योंकि यहाँ तो सन्निकर्ष चाहिए ना, ऐसा अंतर के समय हमें सोचना पड़ता था कि अरे अंदर मूर्त ही है, परंतु उस योग में रहते हुए उसका बंध तो हो सकता है। पांच वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, तीन वेद वाले, जब तीन वेद वाले कहेंगे तो केवल उसका उत्कृष्ट, हाँ तो वो तो जहां तक वेद का उदय है वहां क्षपक को लेना है, वहां मौनी का बंध होगा। क्रोधादि, क्रोधादि हुआ है क्या, क्रोधादि चार कषाय वाले, उसके भी अपने अपने कषाय के, अभी लोभ में तो सूक्ष्म संप्रदाय का कथन घटित होता है, बाकी तो नवे गुण स्थान में लेना। आभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, अभी जब हम आभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोपरि ज्ञानी वगैरह कहेंगे, तीन ज्ञान वालों के लिए यानी चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट कहाँ होगा, अरे मिथ्या तो के सन्मुख वाले को लेना, वेदिनी नाम गोत्र का क्षपक में लेना, और बाकी कौन से नहीं, चौथे वाले, मैंने तीन ज्ञान बताए, पहले तीन लेना, अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी में मिथ्यात्व के सम्मुख लेना, मनोपरि ज्ञानी में असंयत के सम्मुख लेना, संयत मार्गणा में भी ये मिथ्या, और संयमी के वो संयम के सम्मुख वाला, उसके नाम वेदनीय नाम गोत्र का उत्कृष्ट होगा, है ना, संयत, संयत सॉरी असंयत ने, मैंने असंयत का बताया, संयत में यानी छठे से ऊपर, मनोपरि ज्ञानी जो है उसका चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट कब होगा, जब संकलेश ज्यादा होगी, तो कब होगे, तो चौथे के सन्मुख वाला, असंयम के सन्मुख वाला रे, मनोपरि ज्ञान में से छूटकर चौथे गुणस्थान में आते हैं, तब की बात है। हाँ, अवधि ज्ञानी, अभिनिबोधिक, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मिथ्यात्व के सन्मुख चार घाती का उत्कृष्ट है, और क्षपक के तीन अघाती का उत्कृष्ट है, बाकी कथन वही होगा, कथन वही होगा, स्वामित्व अलग अलग, कथन क्या होगा, जैसे मति श्रुत अवधि ज्ञानी में जो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट कर रहा है, वहां वो दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय तीनों का नियम से बंधक है, क्योंकि मोहनी इन जनरल लेनी है हमको, एक भी प्रकृति बनती है तो उसको मोहनी का बंध कहेंगे हम, तो वो षट स्थान कथित हो, बाकी तो ओके समान है। मनोपरि ज्ञानी संयत में भी, चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी में भी ये सब घटित होगा, अवधि दर्शनी शुक्ल लेशा वाले, क्योंकि शुक्ल लेशा वाले भी मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं, तो शुक्ल लेशा में उनका बंध उत्कृष्ट बंध होगा मिथ्या तो गुणस्थान में, और वेदिनी नाम गोत्र का क्षपक के होगा। भव्य सम्यक दृष्टि, जैसे हमने मतिशुत अवधि में देखा था वैसे सम्यक दृष्टि के होगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि, अब क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला, उसका सर्वसंकलिष्ट वाला लेना चार घाती के उत्कृष्ट के लिए। उपशम सम्यक दृष्टि, संगी और आहार जीवन के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि तीन वेद वाले और तीन कषाय वाले जीवों में वेदनी के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव मोहनी का नियम से बंद करता है, क्योंकि नौवां गुण स्थान है। जहाँ क्षपक सूक्ष्म सांप्राय में घटित करते हैं वहां मोहिनी का बंधन नहीं है। तो जो मोहिनी का नियम से बंद करता है, जो नियम से अनंत गुणे हीन अनुभाग का बंद करता है, ये तो नेचुरल है ना? क्योंकि मोहिनी का उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि के हुआ और यहाँ उसका अनंत गुणाहीन होता है नौवे के अंत में। इसी प्रकार सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि उनके भी नौवा गुण स्थान है, वहां तक है वेदिनी नाम गोत्र का उनका वहीं पर शपक जीव के उत्कृष्ट होगा और वहां मोहिनी का भी बंध होगा जो अनंत गुणाहीन होगा। ये समझ में आए प्रेरणा बिन बात ना? ओके, तो अभी हम आदेश में ना देखेंगे। नारकियों में ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये मिथ्या दृष्टि होगा। दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय कर्म का नियम से बंद करता है, किंतु वह छह स्थान पतित अनुभाग का बंद करता है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है। क्योंकि नारकियों में वेदनीय नाम गोत्र का कौन करेगा? तो समय दृष्टि सर्व विशुद्ध वाला करेगा, इनका उत्कृष्ट। तो यहाँ कितना करेगा? मिथ्या दृष्टि, तो अनंत गुणहीन करेगा। आयु कर्म का बंध नहीं करता, क्योंकि कैसा जीव लिया हमने? सर्व संकलेश वाला लिया है। इसी प्रकार तीन घाती कर्मों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी अभी हमने ज्ञानावरण पर घटित किया, उसके बदले दर्शनावरण को रखो या मोहिनी को रखो या अंतराय को रखो, कथन यही होगा। अब वेदनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव चौथे गुणस्थान वाला है, चार घाती कर्मों का नियम से बंद करता है, जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है। वह आयु कर्म का बंधन नहीं करता, क्योंकि वह सर्व विशुद्ध वाला लिया। ख्याल में आती है बात? ये पहले वाला सर्व संकलेश वाला लिया था, ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बांधने वाला। अब वेदिनी का उत्कृष्ट बांधने वाला सर्व विशुद्ध वाला है, यह भी आयु कर्म का बंधन नहीं करता। नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंध करता है, किंतु वह छह स्थान पतित अनुभाग का बंध करता है। इसी प्रकार नाम और गोत्र कर्म की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी अभी वेदनी के बदले नाम को रखो या उसके बदले गोत्र को रखो, कथन यही होगा। अभी नारकियों में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव सात कर्मों का नियम से बंध करता है, जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंध करता है। क्योंकि हमने देखा था आयु कर्म मध्यम परिणाम में बनता है, तो घाती जो सर्व संकलेश में उत्कृष्ट बनता है वो भी अनंत गुणहीन बनेगा। वेदिनी नाम गोत्र वो सर्व विशुद्ध के बनते हैं, वो भी अनंत गुणहीन बनेगा। अपोगत वेदी जीव में डायरेक्ट नारकियों में से अपोगत में दे आगे लिखे शेष मार्गणा में नारकियों के समान बंध। हाँ, जहाँ डिफरेंस है उसकी बात केवल बता रहे, क्योंकि ये बात देवों में भी घटित होगी, तिरियंचों में भी ऐसा ही होगा। उसको पांचवें गुणस्थान में स्वामित्व चेंज होगा, मगर कथन तो ऐसा ही होगा। अपगत वेदी जीवों में। इन नारकी की मार्गना हो गई, अभी अपगत वेद उसमें, अभी क्योंकि तीन वेद वाले तो पहले बता चुके थे ओके समान है, वो मनोयोगी वचन योगी काय योगी सब बताया था ना, ये सब ओके समान है, ये सब बताया था। उसमें बहुत सारी मार्गनाएं, अब यहाँ अपगत वेदी में क्या डिफरेंस है उसको बताएंगे। ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव दर्शनावरण मौन और अंतराय कर्म का नियम से बंद करता है। अपगत में तो सात कर्म तो बंधेगी यहाँ पर, क्योंकि ज्ञानावरण का उत्कृष्ट कब होगा, उपशम श्रेणी उतरते हुए लास्ट में होगा, हाँ सवेद होने के पूर्व समय में। तो ये जो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट करता है वो दर्शनावरण मौन और अंतराय को तो नियम से बांधता है, जो नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है। क्योंकि अपगत वेद वहां पर अनिवृत्तिकरण में ही है ना। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का एक कॉमा लगाना वेदनी के बाद, देखो अपगत वेदी है, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, ये कौन, ज्ञानावरण का उत्कृष्ट करने वाले की बात है। और वो किस पोजीशन पर, उपशम श्रेणी उतर कर लास्ट में, और वेदनी नाम कर्म गोत्र का नियम से बंद तो करता है, जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणे हीन अनुभाग का बंद करता है। देखो हमने देखा है यहाँ तो प्रति समय ऊपर चढ़ते समय प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा अनुभाग का बंद हो रहा था, अनंत किसमें, अनंत गुणा हीन ज्ञानावरण का, वेदनी का उल्टा अनंत गुणा बढ़ रहा है प्रशस्त में, उतरते समय में
समान परिणाम,
हाँ समान परिणाम होते हैं, परंतु प्रति समय अभी क्या होगा, और वेदनी नाम का अनंत गुणा हीन हीन होगा, तो अभी श्रेणी उतर कर नीचे आया है तो उसको अनंत गुणा हीन अनुभाग का बंद होगा, क्योंकि प्रति समय अनंत गुणा हीन होते 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 बंद कहाँ से शुरू हुआ, दसवें में शुरू हुआ, उतरने वाला दसवें में बंद शुरू हुआ, दसवा गुणस्थान और फिर ये नौवे में आया है, थोड़ा भाग बीत गया है। हाँ षट स्थान नहीं है, इसीलिए कहे ना अनंत गुणाहीन, क्योंकि सबका समान है। इसी प्रकार तीन घाती कर्मों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए, उलट पुलट को दर्शनावरण को रखो या मोहनीय को या अंतराय को, कथन यही होगा। वेदनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये कौन है लक्ष्मी जी, हाँ हाँ क्षपक सूक्ष्म सांप्रदाय, तीन घाती कर्मों का नियम से बंद करता है, तीन ही लिया मौन का नहीं है, जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणे ही अनुभाग का बंद करता है। नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, जो नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है। इसी प्रकार नाम और गोत्र कर्म की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। यहाँ तो आयु बनती नहीं है। अब सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों में, क्योंकि संयम सामायिक छदोपस्थापना वगैरह वगैरह उन्होंने पहले सब एक साल एक समान मार्गणा एक साथ बताई। अभी सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव दर्शनावरण अंतराय कर्म का नियम से बंद करता है, मोनी को छोड़ दिया, इसका बंद यहाँ नहीं है। जो नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है, ये दसवें गुण स्थान में उपशम श्रेणी उतर कर अंत में लेना इसको। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है। क्योंकि देखो ज्ञानावरण एक बाजू और वेदनीय नाम गोत्र दूसरे बाजू, ये वो घाती कर्म एक बाजू रखना, ये तीन अघाती कर्म, क्योंकि इनका उत्कृष्ट और उसका उत्कृष्ट ये अपोजिट डायरेक्शन में, चार घाती का उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम में और इनका उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम में, वो क्षपक की तरफ लेना और दसवें में घटित करना है तो उपशम श्रेणी उतर कर नीचे आया हुआ लेना। इसी प्रकार दो घाती कर्मों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। कौन से दो घाती कर्म अश्विन भाई? हाँ, दर्शनावरण का और अंतराय का। वेदनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अभी एक क्षपक अंतिम समय वाला सूक्ष्म सांप्राय वाला, तीन घाती कर्मों का नियम से बंद करता है, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शन अंतराय तो बंद रहे यहाँ पर। जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है, इसके मिनिमम अनुभाग यहीं पर बंधेगा, फिर भी उसको अनुत्कृष्ट कहा, वो है तो जघन्य, जैसे उत्कृष्ट और उससे वो सारे ही अजघन्य में चले आते हैं, जब जघन्य अजघन्य की चर्चा है, और यहाँ हमारी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की है, तो चार घाती कर्मों का तो शपक के जघन्य होता है, उसी को यहाँ अनुत्कृष्ट कहा। अब वेदनीय का उत्कृष्ट बंद करने वाला नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, जो नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है, इसी प्रकार नाम और गोत्र की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष सब मार्गणाओं में नारकियों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायिकायिक जीवों में ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव तीन घाती कर्म और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, जो नियम से षट्सान पतित अनुभाग का बंद करता है,
इसको उत्कृष्ट भी हो सकता है।
हाँ, क्योंकि अग्नि का एक कौन सा बांधेगा गोत्र? निज गोत्र बांधेगा। जब ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संक्लेश में कर तो इसका भी उत्कृष्ट संक्लेश से मैक्सिमम बंद होगा। वेदनीय और नाम कर्म का नियम से बंद करता है, जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है, क्योंकि वो तो विशुद्धि में अधिक बनती है। वह आयु कर्म का बंधन नहीं करता, क्योंकि हमने क्या देखा था, उत्कृष्ट बंद करने वाला जीव ले लिया ना, ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंद कर रहा है तो संकलेश ज्यादा है, इसलिए वहां आयु का बंधन नहीं है। इसी प्रकार तीन घाती कर्म और गोत्र कर्म की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब यहाँ ज्ञानावरण का बंद करने वाला कहा, फिर हम कहेंगे मोनिय का करने वाला, दर्शनावरण का करने वाला, अंतराय का करने वाला या गोत्र का करने वाला। वेदनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव चार घाती कर्म और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, जो नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है। नाम कर्म का नियम से बंद करता है, किंतु वह छोस्थान पति अनुभाग का बंद करता है। केवल अग्नि का एक वायु का एक में ही लगा रहे क्या? चार घाती कर्म और गोत्र कर्म का अनंत गुणाहीन होता है विशुद्धि वाले जीव के, और नाम कर्म का जो बंध होगा वो षट्स्थान पतित होगा। इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ। ये जल्दी पटा हुँ? अब जघन्य का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से ज्ञानावरण के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव। लक्ष्मी जी किस पॉइंट पर होगा ये? श्रेणी शपक में, सूक्ष्म सांप्राय के लास्ट में। तो वह जीव दर्शनावरण और अंतराय का नियम से बंध करता है, जो नियम से जघन्य अनुभाग का बंध करता है, क्योंकि यहां सबके परिणाम समान है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंध करता है, जो नियम से अजघन्य अनंत गुणे अधिक अनुभाग का बंध करता है। एक्चुअली उसका उत्कृष्ट है, उसके लिए यहां अजघन्य शब्द है। वह मोहनी और आयु कर्म का बंधन नहीं करता।
ये भी श्रेणी
है। कौन सा? हाँ हाँ, शपक के होगा अंत में, जिसको हमने उत्कृष्ट कहा था ना,
उसको
अभी जघन्य की अपेक्षा वही अजघन्य हो गया। इसी प्रकार दर्शनावरण और अंतराय कर्म की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। वेदिनी कर्म के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अब ये उल्टा लेना, वेदनीय का जघन्य अनुभाग था, चार घाती कर्म और गोत्र कर्म का नियम से बंध करता है, जो नियम से अजघन्य अनंत गुणे अधिक अनुभाग का बंध करता है। क्योंकि जघन्य की अपेक्षा अजघन्य को कंपेयर करना है तो हम अधिक कहेंगे, उत्कृष्ट की अपेक्षा हम क्या कहते थे, अनुत्कृष्ट को हीन कहते थे, अनंत गुणाहीन कहते थे, यहाँ अनंत गुणा अधिक कहेंगे। हाँ, वेदनीय का वहाँ मध्यम परिणाम वाला हमने देखे ना, वेदनीय नाम गोत्र। हाँ, कोई भी तो ये तो यहाँ तो गोत्र कर्म का, चार घाती कर्म का और गोत्र कर्म का तो बंध हो रहा है, परंतु वो अनंत गुणा अधिक अनुभाग का बंध कर रहा है। क्योंकि चार घाती कर्म का जघन्य कहाँ हो रहा था? शपक के। और गोत्र कर्म का जघन्य कहाँ हो रहा था? तो उसकी अपेक्षा यहाँ कितना होगा? अनंत गुणाधिक। ख्याल में है ना बात? उल्टा पुल्टा लेना दोनों को, चार घाती और गोत्र के अपोजिट डायरेक्शन में रखना। अब कहते मध्यम परिणाम से होता ना, इसलिए आयु कर्म का कदाचित बंद करता है, कदाचित बंद नहीं करता, क्योंकि मध्यम परिणाम होवे तो आयु का बंद होवे ही, ऐसा नहीं, परंतु जब जब आयु का बंद होता है तो मध्यम परिणाम में ही होता है। यदि बंद करता है तो नियम से छह स्थान पतित अनुभाग का बंद करता है। नाम कर्म का नियम से बंद करता है, किंतु वह नियम से छह स्थान पतित अनुभाग का बंद करता है, क्योंकि यहां तो कुछ मध्यम परिणाम होवे, परंतु हमने देखा था ना, जैसे अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं वहां तो एक सा परिणाम है, इसलिए जघन्य के साथ जघन्य, उत्कृष्ट के साथ उत्कृष्ट लगाया था। परंतु यहां कैसे लेना है, नाम कर्म में छह स्थान पतित लेना है। यह भी मध्यम परिणाम से जघन्य होता है, परंतु हर प्रकृति का जो मध्यम परिणाम है उसमें भी कितने वेरिएशन है। इसी प्रकार आयु और नाम कर्म की मुख्यता से, मुख्यता हुआ है, मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। क्या 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 अभी आप उसमें मत जाओ,
पूछ रहा
हूँ, वेदनीय का तो मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि दोनों को लिया,
दोनों को लिया।
अभी अभी समित्व की बात ही कहाँ है ना, हमारी मार्गणा चल रही है। अभी मार्गणा की बात आएगी तब उसकी बात सोचें, और उत्तर प्रकृतियों की उसकी बात सोचेंगे। यहाँ तो मध्यम परिणाम में है,
तो व्यक्ति का जो मध्यम बंध कर रहा है उसको
मध्यम बंध नहीं है, मध्यम जघन्य बंध है, बंध जघन्य है,
मध्यम परिणाम में
जघन्य बंध है।
तो तभी देवायु का भी बंध हो सकता है।
अभी फिर आयु को अपने लिया, अब वेदनी की बात करें कि आयु की बात,
आयु का सन्निकर्ष पूछ रहा
हूँ। हाँ अच्छा, आयु का सन्निकर्ष है तो उसमें भी छह स्थान पतित हो गए।
आयु
हाँ
पीछे मैंने पूछा है कि चारों आयु बन जाए वेदनी के मध्य में।
हाँ मैंने उसके जघन्य भी होगा अजघन्य भी होगा उसमें वो छह स्थान ले लिए ना। अभी छह स्थान का अर्थ होता है उसके अभिभाग प्रतिच्छेद अनुभाग में षट स्थान प्रति जो हीना दिखता है, जघन्य के साथ कंपेयर करेंगे तो हम वृद्धि देखेंगे, उत्कृष्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो हानि देखेंगे।
मनुष्य के लिए मिथ्या दृष्टि आयु कर्म का जघन्य अनुभाग बद्य तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य के लिए बद्य कर जाता, उसकी अपेक्षा ये छह स्थान कथित हो सकता है। तो छह स्थान कथित होगा तो सामान्य भी हो सकता है,
हाँ जघन्य भी हो सकता है, उसका अपना जघन्य हो सकता है या अजघन्य भी हो सकता है। क्या निकल देखो
सन्निक दृष्टि को भी मध्यम परिणाम में होता है तो वो दिन को भी होगा मनुष्य को भी होगा चारों गति को, तो दो ही आयु बांधे है।
देखो जब आयु का जघन्य आएगा तो हमें सोचना है, यहाँ वेदनीय के जघन्य की बात है उसके साथ आयु का कैसे होगा।
अच्छा फिर
होगा ऐसे भी हम देखते हैं आयु का अंतर्मुहूर्त तक जब बंद हो रहा है उसके बीच में भी जघन्य से अजघन्य होता रहता है कि नहीं, जघन्य अजघन्य जघन्य अजघन्य।
यहाँ पे वेदनीय का जघन्य बताया आयु का छह स्थान प्रति करता है तो वो जघन्य भी हो सकता है।
हाँ हो सकता है, आयु का इटसेल्फ जब जघन्य का लगातार जघन्य होता है क्या, एक समय के लिए जघन्य होता है या दो समय के लिए होगा, अधिक तो होता नहीं है। कंटिन्यूस अंतर्मूर्त तक आयु बनती है तो कंटिन्यूस जघन्य तो किसी को नहीं होता है, तो परिणाम अनुभाग की अपेक्षा परिणाम इतने वेरिएशन है, स्थिति की अपेक्षा बात अलग है, वो तो स्थूल था, अनुभाग में और ज्यादा सूक्ष्मता है।
इसीलिए मैंने पूछा कि जो जघन्य का बन करता है तो लब्धि पर्याप्त का बन करता है तो इसके साथ चारों आयु बन सकती है जब ये जघन्य परिणाम होगा।
आपके उत्तर उत्तर प्रकृति में आएंगे उत्तर कल आपने कौन सा वो पूछ देख के आए, ये भी देख के आना।
देवन भाई क्या पूछ रहा हूँ, ये जो मध्यम परिणाम वाला जीव होगा
नहीं नहीं उसको तो मनुष्य तिरियंच अभी बनती है वो स्वामित्व निकालो, दोनों लिए थे हम
मैंने खाली इतने
वो तो बादर एक इंद्रिय भी करता है ऐसा हमने लिया था, वेदनीय नाम का जगन्य तो बादर एक इंद्रिय के भी होता है ऐसा आया था ना, इसीलिए असंख्यात लोक प्रमाण उसमें तो उसका तो वेरिएशन है अंतर पड़ा था। अभी स्वामित्व देख लो, आयु का जघन्य ले सत्रह से शुरू हुआ था और 18 पर वो आयु का होगा, देखो वेदनी नाम में तो अन्यथा समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि परिवर्तन वाला लिया। आयु कहे जगन्य का कौन है तो जगन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान मध्य हाँ पेज नंबर 18 निकालना ऊपर से पांचवी लाइन आयु कर्म का
तो वहाँ पे तो जगह के दर्द कर रहा है वो मनुष्य ओपिनियन शब्द में इसे समझा था कि जो लब्धि अपर्याप्त का बंद कर रहा है।
इसीलिए अभी जो वेदनीय नाम कर्म का बंद करने वाला जो मध्यम परिणाम वाला सम्य दृष्टि होगा तो आयु कर्म का अनुभव उसकी अपेक्षा से ही नाधिक बंधेगा। और जो लब्धि आयु के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो बात अलग है। वेदनीय के साथ आयु को लगा रहे हैं
तो
वेदनी का जगन मिथ्या दृष्टि भी करेगा और समय दृष्टि भी करेगा। और मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि जो कोई आयु बांधेगा उसमें वेरिएशन तो होगे कि नहीं होगे। तो ये वेदनीय एक इंद्रिय भी वेदनी का जगन कर सकता है, पंचेन्द्रिय भी वेदनी का जगन कर सकता है। तो उसके आयु के बंध में शर्त स्थान की वेरिएशन होगी।
अच्छा,
हो सकता है क्योंकि मध्यम परिणाम है ना। अब कहाँ आए थे हम जघन्य के प्रकरण 77 पेज पर। हाँ, जो आयु की बात हुई थी अपनी और नाम कर्म का भी नियम से बंद करता है वो भी। हाँ, नहीं, क्वेश्चन अच्छे है उसके उत्तर भी मिलना चाहिए। कल आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन भी आप भूल गए। वहाँ 5 नंबर है लक्ष्मी जी आपके पीछे, ऐसा सामने निकाल के रखा। राइट साइड में वर्टिकल रखा होगा 5 नंबर। कौन सा है वो 5 है क्या? हाँ, सन्निकर्ष स्वस्थान और परस्थान में लेना पड़ेगा ना इसको, परस्थान में लेना पड़ेगा। जगन्य में लेना है ना। और मार्गणा में देखना है कि अपने ओग में देखना है? हाँ, परस्थान सन्निकर्ष ये उत्कृष्ट है, हमें जगन्य चाहिए ना। परस्थान सन्निकर्ष 93 जगन्य का देखो निद्रा निद्रा का जो बोलते हो 5 अंग्रह का हमें आयु की बात देखनी है ना केवल के वेदनी के साथ। अब यहाँ साता वेदनी असाता वेदनी के साथ अलग बताएंगे। साता वेदनी के जगन्य अनुभव का बंद करने वाला जीव 5 ज्ञानावरण 6 दर्शन 4 समय तीन आयु, दो गति, चार जाति, छह संस्थान, छह स्वर्ण, दो अनुग्री वगैरह वगैरह कदाचित बंद कर करता है, जगन्य भी बंद करता है और अजगन्य का भी बंद करता है, और यदि अजगन्य का करता है तो छह स्थान पतित बुद्धि रोग होता है। और नरकायु का कदाचित बंधक है, जगन्य भी बंद करता है और अजगन्य भी करता है, और अजगन्य तो षट्स्थान पतित बुद्धि रूप होता है। जब असाता की बात है तब देवायु को छोड़कर अन्य तीन को ले, साता की है तो नरकायु छोड़कर अन्य तीन को ले। हाँ, यानी साता का जगन्य है तो नरकायु छोड़कर तीन आयु बांध रहे, जहाँ हमने वेदनीय का जगन्य इतना ही लिया था वहाँ साता वेदनीय का जो जगन्य, हाँ, नरकायु को भी लिया उन्होंने, उसका भी जगन्य या अजगन्य दोनों बांधते ऐसा लिया है, परंतु मुख्यतः साता वेदनीय का बंद हो रहा है नरका, जब नरक गति बन रही है, नरक गति के साथ असाता वेदनीय का भी बंध होता है। तीन को लिया उन्होंने अलग से,
दोनों को अलग अलग तीन
अलग अलग
क्योंकि यहाँ पे जगन्य तो दोनों में समान ही होगा ना, असाता का जगन्य
अभी आयु कर्म का अपना जगन्य सोचना है, अभी साता असाते की बात मत सोचो, अभी तो हम मूल प्रकृतियों की बात को मुख्यता रखेंगे, ये आपको आगे के प्रश्न उठते हैं मगर कंफ्यूजन बढ़ रहा है उससे, हम केवल इतना सन्निकर्ष यहाँ जो साता का जगन्य है वो आयु का कदाचित बंधक है, और यदि बंद करता है तो नियम से शस्थान पतित अनुभाग का बंद करता है, नाम कर्म का भी नियम से बंद करता है, वो भी नियम से शस्थान पतित अनुभाग का बंद करता है। अभी इसके बदले आयु को रखो, जो आयु का जगन्य बंद कर रहा है वो वेदनीय का और नाम का कैसे शस्थान पतित करेगा, मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव छह कर्मों का नियम से बंद करता है, और मोहनीय का जघन्य अनुभाग करने वाला कौन है, शपक नौवे वाला, नौवे के अंत में अनिवृत्तिकरण वाला क्षपक, छह कर्मों का जो नियम से अजघन्य अनंत गुणा अधिक अनुभाव का बंद करता है, क्योंकि उसका जघन्य तो दसवें में होता है, इसका नवे में है, उसका दसवें में है, और वहाँ कितनी बार अनंत गुणाहीन होते चला जाएगा, प्रति समय अनंत गुणाहीन होते गया ना, वह आयु कर्म का बंधन नहीं करता क्योंकि नवे का अंत है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव सातवें नरक का सम्मुख के सन्मुख वाला जीव छह कर्मों का नियम से बंद करता है, मेरा प्रश्न आयु का बंद करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, प्रागुल अवधि में उसके चारों ही आयु के बंधा अपसरण हुए। तो छह कर्मों का नियम से बंद करता है, जो नियम से अजघन्य अनंत गुणे अधिक अनुभाग का बंद करता है। ये कारण है, ये कि समय को प्राप्त करने का एक समय पूर्व का परिणाम है। ये सातवें नरक में हम देख रहे हैं। और प्रायोगिकरण लब्धि में भी आयु का बंधन वहां नहीं होता है, विशुद्ध परिणाम है यदि। और ऐसे भी हमने देखे थे प्रायोगिक लब्धि से लेकर बंधापसरण होता है। अब ये तो वेदक समय दृष्टि भी हो सकता है, प्रायोगिक लब्धि नहीं भी लेंगे फिर भी विशुद्धि है। सम्यक तो प्राप्ति के पूर्व में जो विशुद्धि है वहां आयु का बंध नहीं होगा। और छह कर्मों का अनंत गुणा अधिक अनुभाग का बंध होता है, क्योंकि हमने देखा है ये अभी ओग में देख रहे हैं, चार घाती का जघन्य तो क्षपक में होगा और वेदिनी नाम का जघन्य तो मध्यम परिणाम में होगा, और यहाँ कितना होगा उसका अनंत गुणा अधिक। आयु कर्म का बंध नहीं करता है। इसी प्रकार ओग के समान पंचेंद्रिय द्विक, त्रस द्विक, पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक का योगी लेंगे तो गोत्र कर्म का जघन्य व अग्नि का एक में लेना पड़ेगा। हाँ, कथन वैसा ही होगा। लोग कषाय वाले, आभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परि ज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, भव्य समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि, उपशम समय दृष्टि, संगी, इस के ऊपर बिंदी बराबर करना है, छोटी है, और आहारक जीवों के जानना चाहिए, उनमें भी यही बात घटित होगी। आगे पढ़ें। नारकियों में ज्ञानावरण के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तीन घाती गति व घाती कर्मों का नियम से बंद करता है। ज्ञानावरण का जघन्य कौन बांधेगा? समय दृष्टि सर्वविषय का। हाँ, किंतु वो छह स्थान पतित अनुभाग का बंद करता है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है। जो जो बराबर दिख रहा है कि जा दिख रहा है, जो अस्पष्ट है, नियम से अजघन्य अनंत गुणे अधिक अनुभाग का बंद करता है, क्योंकि तो मध्यम परिणाम में उसका जघन्य होगा। गोत्र कर्म का तो जघन्य समय को सन्मुख वाले के होगा, और यहाँ आकर उसको अनंत गुणा अधिक होगा। वह आयु कर्म का बंधन नहीं करता, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेश वाला लिया, सॉरी जघन्य उत्कृष्ट विशुद्धि वाला लिया। इसी प्रकार तीन घाती कर्मों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी एक एक को रखना एट ए टाइम। वेदनीय कर्म के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव चार घाती कर्म और गोत्र कर्म का नियम से बंध करता है। जो नियम से जघन्य अनंत गुणे अधिक अनुभाग का बंध करता है, क्योंकि वेदनीय का जघन्य मध्यम में होगा तो इनका तो अजघन्य होगा, यहाँ पर अनंत गुणा अधिक होगा जघन्य के कंपैरिजन में। आयु कर्म का कदाचित बंध करता है, क्योंकि मध्यम परिणाम वाला है ना, और कदाचित बंध नहीं करता। यदि बंद करता है तो वह नियम से छह स्थान पतित अनुभाग का बंद करता है। नाम कर्म का नियम से बंद करता है, किंतु वह छह स्थान पति तनुभाग का बंद करता है। बंद बराबर करना बिंदी। इसी प्रकार आयु कर्म की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी वेदनी के बदले वहां आयु रखेंगे। नाम और गोत्र कर्म की मुख्यता से सन्निकर्ष ओग के समान है, इसको वेदनी के समान क्यों नहीं लिखा? हाँ वही तो, क्योंकि ओग में तो नाम कर्म की कहते वेदनी के समान आयु और नाम कर्म जैसा बताया। दोनों को इकट्ठा नहीं लेना है, नाम और गोत्र को। नाम का है वो वेदनी के समान लेना, और गोत्र का तो अलग से बताया था उन्होंने ओग में, क्योंकि वो सातवें नरक के नारकी के अनिवृत्तिकरण में होता है लास्ट समय में, तब अन्य कर्म बनते हैं जो नियम से अजघन्य अनंत गुणे अधिक होगा, और आयु का वहां बंधन नहीं होता। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी, वहां पर भी यही कथन होगा। सामान्य तिर्यंच कथन तो वही घटित होगा, स्वामी भले अलग है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव सब एकेंद्रिय, औदारिक का योगी, वैकृत का योगी, वैकृत मिश्र का योगी, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, जब कार्मण है तो आयु का बंध तो उसकी बात छोड़ देंगे वहां पर। मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, असंयत, तीन लेशा वाले, अभव्य, वेदक सम्य दृष्टि, सासाधन सम्य दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। पहली पृथ्वी से लेकर छठवीं पृथ्वी तक के नारकियों में वही भंग है, इतनी विशेषता है। इनमें गोत्र कर्म का भंग वेदनी के समान है, यानी मध्यम परिणाम में होगा। वहां आयु का बंध होगा, होगा भी नहीं भी होगा। तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देवों से लेकर उपरिम ग्रेविक तक के देव सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, रस अपर्याप्त, सब पृथ्वी का एक, सब जल का एक, वनस्पति का एक, बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर और निगोद जीवों के इसी प्रकार जानना चाहिए। मनुष्य त्रिक में चार घाती कर्मों का भंग ओग के समान है, और शेष कर्मों का भंग दूसरी पृथ्वी के समान है। क्योंकि ओग में गोत्र का जो घटित किया वो यहाँ नहीं होगा, इसलिए दूसरी पृथ्वी मध्यम परिणाम। सब अग्नि का एक और सब वायु का एक जीवों में ज्ञानावरण के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव तीन घाती कर्म और गोत्र कर्म का नियम से बंध करता है, किंतु वह छह स्थान पथित अनुभाग का बंध करता है, शेष भंग अपर्याप्त कुंभ के समान है। अभी अपर्याप्त ऊपर लिए थे हम। त्रिवेदी जीवों में किसको? देखो क्या कहते हैं, ज्ञानावरण का जगन्य अनुभव कब करेगा? सर्व विशुद्ध में। तो वहां गोत्र कर्म का जगन्य भी हो सकता है, इसलिए शर्सा नहीं लिया। उनमें इस अच्छा, आप जल का एक से अलग क्यों लिया, ऐसा आप पूछ रहे हैं? हाँ, तो क्योंकि जलकय वगैरह कहने से बादर बादर जो है जीव वो उसका जगन नहीं करेंगे। गोत्र गोत्र की अपेक्षा उसको डिफरेंट निकाला। देखो क्या कहते हैं, इसी प्रकार जानना चाहिए, जो पृथ्वी का एक जल का एक वनस्पति का एक को इसी प्रकार जानना चाहिए। इसी प्रकार में क्या क्या लिया हमने, देखो जो नारकियों में देखा था 77 पेज पर, कि ज्ञानावरण का जगन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव तीन घातिकरा नियम से बंद करता है, जो सस्थान पतित होता है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का बंद करता है, और जगन्य अनंत गुणा अधिक अनुभव का बंद करता है, क्योंकि ये गोत्र भी वहां मध्यम परिणाम वाली को ले। और आयु कर्म का बंधन नहीं करता, वो भी घटित होगी वहां पर बाद, क्योंकि ज्ञानावरण का जगन्य कर रहा है ना, सर्व विशुद्ध वाला नहीं। वहां सर्व विशुद्ध वाला अन्य जो जीव है पृथ्वी का एकादि और अग्नि का एकादि, अग्नि का एक तो निज गोत्र ही बांध रहे कंटिन्यूस, तो अग्नि का एक जीव गोत्र कर्म का जगन्य में जगन्य बांध देगी सर्व विशुद्ध अवस्था। यहाँ चार घाती कर्मों का भी षट स्थान होगा। अब स्त्री वेदी जीवों में ज्ञानावरण के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तीन घाती कर्मों का नियम से बंद करता है, जो नियम से जगन्य अनुभाग का बंद करता है। प्रेरणा भी यहां षट स्थान क्यों नहीं लिए, हाँ शपक है और वो अनिवृत्तिकरण है, क्योंकि स्त्रीवेद का उदय वाला जीव लिया। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंद करता है, जो नियम से अजगन्य अनंत गुणे अधिक अनुभाग का बंद करता है, क्योंकि आगे चलकर उसका और जगन्य होते होने वाला है दसवें के अंत में, उसकी अपेक्षा यहाँ पर वो अनंत गुणा अधिक होगा। शेष भंग सामान्य देवों के समान है, जो हमने नारकी के समान भी देखा था। शेष भंग कौन से रहे हैं, आयु का ही रही है ना,
आयु तो खत्म नहीं हो गया ना।
आयु तो बंदे नहीं,
ज्ञानावरण का तीन घाती कर्मों का नियम से लिया ना, तीन घाती कर्म में मोनी भी आ गया, तीन हाँ चार सात हो गए ना, आयु केवल रह गया शेष भंग। नन्नपन श्रीवेदी जीव जब आयु का जगन्य कर रहे हैं तब की बात है, ये ज्ञानावरण के साथ उन्होंने बता दिया। शेष भंग ने क्या कि अन्य तीन घाती कर्मों के जगन्य पर लगाओ, वेदिनी नाम गोत्र के जघन्य पर लगा लो, इस तरह से। अब यहाँ सातवें नरक का तो नारके नहीं लेंगे, गोत्र के जघन्य में किसको लेंगे, मध्यम परिणाम वाला। इसी प्रकार पुरुष वेदी जीवों में जानना चाहिए, नपुसक वेदी जीवों में चार घाती कर्मों का भंग स्त्री वेदी जीवों के समान है, शेष भंग सामान्य नारकियों के समान है। इसलिए सामान्य नारकियों के समान होता है। इसी प्रकार नपुसक वेदी जीवों के समान क्रोध कषाय वाले, मान कषाय वाले, माया कषाय वाले, सामयिक संयत और शिदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए। ये नवे गुण स्थान तक हो गए, इतनी बात है। अपगत वेदी जीवों में जैसे हमने उत्कृष्ट में भी देखा था, ज्ञानावरण के जघन्य अनुभव का बंध करने वाला जीव दर्शनावरण और अंतराकर्म का नियम से बंध करता है, जो नियम से जघन्य अनुभव का बंध करता है, वेदनीय नाम और गोत्रकर्म का नियम से बंध करता है, जो नियम से अजघन्य अनंत गुणे अधिक अनुभव का बंध करता है, क्योंकि इसका जघन्य तो मध्यम परिणाम में होता है और यहाँ पर उसका अनंत गुणा बढ़कर हुआ है। यह मोहनीय का बंध नहीं करता, कौन जीव लिया? ज्ञानावरण का जघन्य करने वाला अक्षपक दसवा। इसी प्रकार दर्शनावरण और अंतराय कर्म की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। वेदनीय कर्म के जघन्य अनुभव का बंध करने वाला जीव ये मध्यम परिणाम वाला है, वो भी अपगत वेद में लिया। अपगत वेद में कैसे लेंगे मध्यम परिणाम?
अपगत वेद ही लेते हो, वेदी का जगह जो तो श्रेणी से उतरते समय अतिरिक्त होता है।
हाँ, वही वेद के सम्मुख वाला है, वो चार घाती कर्मों का नियम से बंधक होता है, जो नियम से अजगण्य अनंत गुणे अधिक अनुभव का बंध करता है। नाम और गोत्र कर्म का नियम से बंध करता है, कौन? वेदिनी कर्म का जघन्य बांधने वाला जीव नाम कर्म और गोत्र कर्म का नियम से बंध करता है, जो नियम से जघन्य अनुभव का बंध करता है, क्योंकि अपगत वेद में तो समान परिणाम है ना। इसी प्रकार नाम और गोत्र कर्म की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभव का बंध करने वाला जीव ये नवे के लाश्रम छह कर्मों का नियम से बंध करता है, जो नियम से अजघन्य अनंत गुणे अधिक अनुभव का बंध करता है, क्योंकि चार कर्मों का तो और घटने वाला है और बाकी का तो यहीं पर बढ़कर आया है, इसलिए अनंत गुणा अधिक होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत जीवों में छह कर्मों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। पीत और पद्म लेशा वाले जीवों में सामान्य देवों के समान भंग है और शुक्ल लेशा वाले जीवों में मनुष्यों के समान भंग है। यहाँ से नया विषय शुरू होता है, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय। हाँ, इसीलिए हम रुकेंगे अभी, क्योंकि ये नया विषय दो लाइन भी नहीं होगी उसका। जावानी के ज्ञान पे सूझे लो कालो सोवानी मस्तक नमो सदा देव।